से ही पाठ मिल जाता है, इसलिए अर्थ एक ही होता है, तो कोई आपत्ति की बात नहीं। तो यहाँ ये अर्थ होता है कि मेरे नेत्रों के सन्मुख वही विग्रह, वही आपकी मूर्ति हमारे सामने विद्यमान है। मन लोचन गोचर से ही आवा, मेरे नेत्रों के सामने वही मूर्ति आज मौजूद है, भगवान राम की मूर्ति। तो क्या प्रभु आज मुझको कहते हो कि तुम्हारे को जीवित रख दूं, अमर बना दूं, तो क्या प्रभु इस प्रकार की झांकी फिर हमारे कोशिश करने से क्या आ सकती है? क्या प्रभु इस प्रकार की तस्वीर जो अब लगी हुई है, या फिर कभी ऐसी तस्वीर क्या लगाने से लग सकती है? और मुझको समझो कि अभिमान के बस में जान करके के, और आप ये कहते हो कि तुम्हारे को मैं अचल रख दूं, तो प्रभु आप ख्याल करके देखो, कोई ऐसा कोई मूर्ख होगा? ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अपने कल्प वृक्ष को काट करके और वहां बमूल का वृक्ष, कांतों का वृक्ष लगावेगा? तो इस समय में मैं एक प्रकार से जीना चाहूं, इस समय के मां इस मौके को छोड़ दूं, जो अक्षरों के बीच के मां आपका ध्यान करता करता एक तो मैं जाऊं और एक इस शरीर को मैं रख लूं, तो इस शरीर का रखना कैसा है कि आपके ध्यान को, आपके इस दर्शन को, इस मौके को अंत समय में छोड़ दूं, असमझो कि बदले के बीच के मां मैं जीना चाहूं, अमर होना चाहूं, तो वो कैसा है कि वो तो ऐसा है कि कल्प वृक्ष को आपने काट करके और वहां समझो कि बमूल का वृक्ष लगाना। और वो अब तो मैं यही चाहता हूं कि जिस जोनी के मां मेरा जन्म हो, आपके चरणों में मेरा अनुराग हो, जिस योनि जन्म हम कर्म बसते हैं, राम पद अनुराग, अपने कर्मों के अनुसार मैं जहां जन्म लूं वहां आपके चरणों में मेरा प्रेम होना चाहिए, और मैं कुछ भी नहीं चाहता। भगवान ने सोचा कि मेरे हाथ से मारा गया और मेरे देखते देखते मेरे सामने मर रहा है, और ऐसा इनका भाव है, और फिर इसका यदि जन्म होए तो मेरे लिए वो कलंक, ऐसा समझ करके और भगवान ने उसे बाली को अपने परम धाम में भेज दिया। उसका तो स्वार्थ का त्याग है कि मैं कहीं जन्म लूं अपने कर्मों के अनुसार, नहीं कहता कि मेरे को आपके परम धाम में भेज दो, किंतु भगवान दया करके उसके साथ में ऐसा विवाद करते हैं। तो इससे समझना चाहिए कि भगवान की कितनी उदारता है, और बाली पहला पापी था किंतु भगवान के दर्शन के प्रभाव से थी उसकी बुद्धि पलट गई, उसका भाव शुद्ध हो गया, उसे के हृदय के भीतर के बीच के मां की प्रेम भाव की जागृति हो गई, निष्काम भाव की जागृति हो गई कि प्रभु अपने कर्मों के अनुसार मैं झाँ जन्म ले, आपके चरणों के मां मेरा अनुराग है, ये आपसे मेरी प्रार्थना है। और दूसरी ये प्रार्थना है, ये जो मेरा लड़का जो अंगत है, मैं इसकी बाह पकड़ के और आपको सौंपता हूँ कि इसको आप अपना सेवक बना लीजिए। ये दूसरी बात, तो देखो कैसा भाव कि मेरा कल्याण हो जाए और मेरा पुत्र रह जाए तो क्या इसका भी कल्याण होना चाहिए, इसको भी मैं सुपुर्द कर देता हूँ, आपको सौंप देता हूँ, आप किस चरणों के मैं इसको मैं सौंप देता हूँ। तो उनका भी उद्धार हो गया, बालिका भी, और फिर उसके लड़के का हो गया, इसमें तो कहने क्या, समझो अंगद ने तो भगवान के भरोसे काम किए, और जिस समय के बीच के मां अंगद विदा हो रहा है उस समय में हनुमान से कहते हैं कि हनुमान और तो कुछ नहीं किंतु बार बार मेरी समृद्धि दिला देना, यही मेरी सपना। हनुमान से थी अंगद ऐसे प्रार्थना करता है कि समय समय के ऊपर भगवान को याद दिला देना मेरी तरफ से, तो मेरी तरफ भगवान की सुरत हो जाएगी तो बस मेरा कल्याण होगा, क्योंकि भगवान जिसको याद कर ले उसके कल्याण में फिर क्या संशय। एक महात्मा पुरुष भी किसी को याद कर ले तो उसका और भाग समझना चाहिए, और साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको याद कर ले उसकी तो फिर बात ही क्या है। तो हनुमान ने तो यही बात है सुखी, तो इसे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो कि बाली जैसे पापी है उनका भी उद्धार हो गया, तो हम लोगों के बीच के माँ जो बाली की माफक जो पापी है उसके लिए भी गुंजाइश है। अब जो थोड़ा पापी है उसकी तो फिर बात ही क्या है, उसकी तो बात ही क्या है। तो इससे ये बात समझनी चाहिए कि पापी से पापी का उद्धार हो सकता है। बात ये थी कि जो आपने यम नियम का पालन करने वाला नहीं है, समय के ऊपर उन्होंने यम नियम का पालन नहीं किया, तो अब केवल भक्ति करने से उसका उद्धार हो सकता या नहीं, तो उसका ये उत्तर दिया गया कि यम नियम का पालन करना तो अच्छा ही है, किंतु नहीं किया गया तो भगवान की शरण होने से थी, भगवान की भक्ति करने से, भगवान की अनन्य भक्ति का इतना भारी प्रभाव है, वो कैसा भी पापी क्यों नहीं हो वो क्षिपल भवती धर्मात्मा जल्दी धर्मात्मा बन सकता है। तो हम लोग पापी से भी पापी हुए तो भी धर्मात्मा बन सकते हैं, केवल धर्मात्मा ही नहीं, जो सदा रहने वाली जो परम शांति है, शाश्वत शांति है, उसकी प्राप्ति हमारे को हो सकती है। इस बात को ख्याल में जाकर के भगवान के विरुद्ध को देख करके कभी हमको समझो कि निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। जो अच्छे जो पुरुष होते हैं वे कभी निराश ऐसो नहीं होते, वे आशावादी हैं। तो ये उसका उत्तर दिया गया। अब दूसरी बात ये थी कि एक बहन ने या कोई भाई ने ये भेजा कि भगवान के लीला के विषय में कि गोपियों के माधुर्य प्रेम के विषय में कहना चाहिए, गोपियों की लीला के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में जो गोपियों ने लीला की उस विषय में कहना चाहिए। तो उस विषय में भास्तु के बीच के नाम जो है वही पुरुष कह सकते हैं जो एक प्रकार से इस विषय के नाम रंगा हुआ हुए। मेरी तो सामर्थ्य के बाहर की बात है, और भास्तु के बीच के नाम गोपियों का जो भगवान के साथ में प्रेम था और जो उनकी परस्पर के में जो लीला थी वो वास्तव में बाणी का विषय थी। ये भी मैं कह दूं तो अतियुक्ति नहीं होगी कि जब वो बाणी का विषय ही नहीं है तो वो तो एक प्रकार से थी, उसको गोपियां और भगवान ही जानते हैं, और गोपियां भी कहना चाहे तो कह नहीं सकते। प्रथम तो वाणी का विषय में इसलिए नहीं कह सकती, और यदि कहने लगे तो समझो कि उस प्रेम के मां इतनी वो मुग्ध हो सकती है, उनका गला भूख सकता है कि वो कहते कहते प्रेम के मां बेहोश हो सकती। भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी जो विषय वाणी का नहीं तो उसको वाणी से क्या कहें, किंतु कह सकते हैं तो कुछ भगवान कह सकते हैं और गोपियां कह सकती हैं, या कोई उनका भगत हो तो वो कह सकता है। और जो समझो कि साधारण पुरुष क्या कह सकते, भगवान की और गोपियों की जो लीला होती है उनके बीच के में जो अपने मन से शामिल होता है या शरीर से शामिल होता है वो कह सकता है। और जो ये कहे कि मैं उस गोपियों की लीला में शामिल होता हूं, मन से शामिल होता हूं या शरीर से शामिल होता हूं, तो ये छोटे हैं बड़ी बात। जो वास्तव के बीच के मां ऐसा होगा तो उसको कहने की क्या आवश्यकता पड़ेगी, वो कहेगा ही नहीं। हाँ, मन से शामिल होना कोई कठिन बात भगत के लिए नहीं है। हम लोगों के साधारण आदमियों के लिए शायद कठिन हो सके है, किंतु जो भगवान का भक्त है, जो एक प्रकार से सुंदरती गोपियों का भक्त है, भगवान का भक्त है, उनके लिए कोई कठिन बात नहीं। अब आपको जो इस विषय में बतलाया जावे, तो इसी उद्देश्य से कि भगवान के और गोपियों के प्रेम की चर्चा करनी अच्छी है। इसे ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अपने मन से या शरीर से एक प्रकार से उनकी लीला में शामिल होता हूं, ये नहीं समझना चाहिए। जो आपको बात कही जाती है वो शास्त्रों के आधार पर, और केवल शास्त्रों के आधार पर नहीं, जो अच्छे जो पुरुष हैं उनसे सुनी हुई और अपने मन के मां अनुमान की हुई, ये सब बातों के आधार के ऊपर यत किंचित कहा जाता है। सब शास्त्रों की बात ही नहीं। एक समय के बीच के मां शिवजी ने पार्वती से ये बात कही कि भगवान का जो समझो कि जो महारास है, अद्भुत जो रास है, आजकल के जैसा नहीं, पैसा लेकर के दिखलाने वाला ये रास नहीं, अश्लील रास नहीं, जो विशुद्ध जो रास है, जिसके बीच के मां समझो कि नाचना गाना बजाना नृत्य करना होता है, और जिसमें करने वाले मुग्ध हो जाते हैं, वो रास। तो उमा ने यानी पार्वती ने ये उत्तर दिया कि वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, वहां तो समझो कि स्त्रियां ही जा सकती है, और आपको यदि देखना हो तो आप भी सखी का वेश बना लो। तो शिवजी भी एक प्रकार से सखी का वेश बना करके वहां गए। भगवान तो समझ ही जाते हैं, भगवान ने कहा कि एक प्रकार से उमा को, आज तू एक नई सखी को लाई है। हाँ महाराज, नई सखी को लाई हूं। भगवान समझ गए ये सखी नहीं है तो सखा है। तो भगवान तो विनोद करते हैं। तो उस जगह की जो लीला है वो एक अलौकिक लीला है। भगवान जब नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उस समय के बीच के मां माने जितनी सखियां होती है, जितनी गोपियां होती है, उतने ही रूप भगवान अपना धारण कर लेते। अब उतने ही रूप हो गए तो समझो कि भगवान के इधर में भी सखी और इधर में भी सखी, और सखियों के इधर में भी श्री कृष्ण, उधर में भी श्री कृष्ण। तो आप श्री के मां हाथ मिला करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, गोपियां दोनों हाथों से कृष्ण को पकड़ती है और भगवान कृष्ण दोनों तरफ गोपियों को पकड़ते हैं, कि जितनी तो एक प्रकार से सखियां और जितने समझो कि भगवान। अब उसके बाद के मां भगवान की तान के साथ में सब नाचते हैं, एक स्वर से और एक ताल से थी, और नाचते हैं और गाते हैं। भगवान प्रेम का गाना गाते हैं और उस प्रेम के गाने के साथ साथ सबका गाना एक प्रकार से होता है। जैसे हमारे राजपूताना की मां समझो गिंद ढलती है, वो भी उसके मुकाबले कुछ नहीं, और समझो कि उसके मुकाबले तो कोई है ही नहीं। तो एक उसका एक तरीका, उसकी एक नकल लोग किया करते हैं। तो इस प्रकार से थी भगवान वहां महाराज करते हैं, उस राज के बीच के मां, और नाचते 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 सब बेहोश हो जाते हैं, प्रेम के मां बेहोश हो जाते हैं। अपने आप का किसी को ज्ञान नहीं रहता, भगवान का जो नाचना है, गाना है, बजाना है, वो सब गोपियों के लिए। बजाना क्या कि जब इस प्रकार से थी, रास के आरंभ में और रास के अंत के वहां भगवान जब बंसी बजाते हैं तो चारों तरफ मंडलाकार से गोपियां खड़ी होकर के और सब उस बंसी की धुन के अनुसार नाचती है। और अंत में भी, आदि में और अंत में, तो इस प्रकार से थी वहां नाचना होता है, गाना होता है, सब एक साथ में नाचते हैं, एक साथ में गाते हैं। नाचने को ही नृत्य करना कहते हैं। और भगवान जब बंसी बजाती है तो सब गोपियां ही नहीं, गोपियों का एक जो मंडलाकार है, उसके बाद दूसरा समझो कि गायों का मंडलाकार है, वे भी उसी प्रकार से थी, एक अपने नेत्र से देखती है और कानों से सुनती है, पशु भी गायों भी एक प्रकार से थी, और उस महाराज को अपने गाया देखती है, और भगवान जब बंसी बजाते हैं तो उस बंसी की धुन को सुनकर के और गाय मुग्ध हो जाती है, चित्राम की माफक हो जाती है, और गोपियां भी चित्राम की माफक हो जाती है जब भगवान बंसी बजाते हैं। फिर भगवान की जो सारी लीला है, फिर भगवान का जो नाचना गाना बजाना है, फिर भगवान अकेले समझो कि आपने जैसे उस समय में ऐसा समझना चाहिए कि वहां यमुना का किनारा है और वहां एक कदम का घाट है, उस कदम के घाट पर बैठे हुए भगवान बंसी बजा रहे हैं, और बजाते बजाते गोपियों के झुंड में जो मंडलाकार से गोपियां खड़ी है उसमें कूद पड़ते हैं और कूद करके उछलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उस लीला को देख कर करके और गोपियां सब मुग्ध हो जाती है। भगवान की वो लीला गोपियों को मुग्ध करने के लिए होती है, भगवान की वो लीला गोपियों के हृदय में आमोद प्रमोद बढ़ाने के लिए, आनंद और प्रेम बढ़ाने के लिए समझो कि वह करे है। उसके बाद के बीच के वहां समझो कि गोपियां भी जो अपने गाती बजाती है वो भी एक प्रकार से भगवान को मुग्ध करने के लिए, उनकी मां जो राधिका जी जो है वो सबके ऊपर मालिकनी है और सब उनकी सहेलियां हैं, वे सब मिलकर के अपने गाती बजाती है, राधिका जी के स्वर के साथ में सबका स्वर, उनके गाने बजाने नाचने के साथ में गाना बजाना नाचना, तो इस प्रकार से थी समझो कि वे गोपियां सब मिलकर करके के और अपने भगवान को आह्लादित करती है। सारी दुनिया को आह्लादित करने वाले भगवान श्री कृष्ण, उन्हें सबको एक प्रकार से थी आह्लादित करने वाले भगवान, उनको आह्लादित करती है गोपियां। तो गोपियों की सारी लीला, सारी चेष्टा जो है वो भगवान को आह्लादित करने के लिए, मुग्ध करने के लिए, इस उद्देश्य कि भगवान के हृदय के बीच के वहां प्रेम भाव का प्रादुर्भाव नित नया होता रहे और भगवान एक प्रकार से मुग्ध होते रहे हमारी चेष्टा और लीला को देखते देख देख करके। तो गोपियों की लीला भगवान के लिए और भगवान की लीला गोपियों के लिए, आमोद प्रमोद और आनंद और प्रेम की वृद्धि के लिए उनकी ये सब लीला होती है। होते होते इस प्रकार से वे मगन हो जाते हैं कि उनको अपना ज्ञान नहीं रहता, गोपियों को तो केवल भगवान का ही ज्ञान रहता है और भगवान को केवल गोपियों का ही ज्ञान रहता है। वे गोपियां का ये उद्देश्य है कि हमने दूसरी तरफ आपको देखने देवे और हम लोग आपके साथ दूसरी तरफ न देखें, आप हमारे को देखते रहें और हम आपको देखते रहें। यह प्रतिज्ञा भगवान ने गीता में भी की है सबके लिए, युवान पश्यति सर्वत्र सर्वं चरमयि पश्यति तस्यहं न प्रणश्यामि और सत्यमे न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है उससे मैं कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता, वह मुझको देखता रहता है, मैं उसको देखता रहता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने गीता की गीता की 36 अध्याय के 30 के श्लोक में कहा है और उसका फल फिर 31 के श्लोक में बताया कि सर्वभूत स्थित मन बजति एक सर्वथा वर्तमान भी सहयोगी वही वर्तते। इस प्रकार से थी। अब इसका ख्याल करना चाहिए गोपियों का और भगवान के साथ में यही समझना चाहिए और हम लोग भी अपने भाव से थी अपने में घटावें तो इस प्रकार से समझना चाहिए। इसका ये अर्थ है भगवान सबके लिए कहते हैं कि सर्वभूत स्थितम यो मन सारे भूतों के मां मैं जो स्थित हूं यहां मात्र चराचर के मां मैं जो स्थित हूं ऐसा जो मैं ऐसे मुझ परमात्मा में जो एक ही भाव से स्थित हो जाता है। एक ही भाव से स्थित होना यह है कि जो मुझ परमात्मा कोई अपने सर्व पर देखता है तत्व को मोह के शोक है एकत्व अनुपस्थित है जो एक मुझको ही देखता रहता है वहां कहां शोक और कहां मोह है इसके मां ये बात बताई। तो यहां कहा जाता है कि मुझ परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर के एक ही भाव से स्थित होना यह है कि एक परमात्मा के सिवा और दूसरी चीज को नहीं देखना नहीं अनुभव करना। तो यह बात गोपियों में थी। कोई भी पुरुष इस प्रकार से समझे कि एक ही भाव से भगवान को भगवान में स्थित होकर के और केवल एक भगवान को ही देखता रहता है भगवान के सिवा किसी को नहीं देखता है उसका वो देखना ही भजना है। सर्वभूत स्थितम यो मन भजति एकत्व आश्रित है एकत्व में स्थित होकर के भजे अपने आप का ज्ञान नहीं कि भगवान कहते मेरे एक का ही ज्ञान है मुझ एक को ही देखता है और मेरे सिवा और दूसरी चीज को नहीं देखता। जैसे गोपियां केवल एक भगवान को ही देख रही है भगवान कृष्ण के सिवा और किसी को नहीं देख रही है जिस वक्त में प्रेम के मां मुग्ध हो जाती है प्रेम के मां मूर्छित हो जाती है तो भगवान को ही देख रही है। तो इस प्रकार से समझो कि जो भगत है मुझ परमात्मा के मां तन्मय होकर करके और मेरे कोई मेरे में स्थित होकर के और एक ही भाव से स्थित होकर के अरे मुझको ही अपने बजता है यानी मुझको ही देखता रहता है वह सब प्रकार से थी बरतता हुआ मेरे में ही बरतता है उनकी दृष्टि के मां मेरे सिवा दूसरी वस्तु नहीं है इसलिए वो मेरे में ही बरतता है मन मेरे में क्रिया करता है मेरे में वो रमण करता है। इस प्रकार से थी भगवान कहते हैं। तो गोपियों का जो है वो पीड़ा करना रमन करना भगवान के मन ही है अपने सब इंद्रियों से थी समझो भगवान को वो देख रही है भगवान के मां मगन होकर के और सब प्रकार से भगवान को देख रही है। इसी प्रकार से हम लोग समझो कि मन से थी ऐसी भावना करें कि भगवान यहाँ विराजमान हो रहे हैं और भगवान यहाँ एक प्रकार से बंसी बजा रहे हैं और इस प्रकार से समझ कर कर करके हम मन से थी मन रूपी नेत्रों से भगवान को देखें मन रूपी नेत्रों से भगवान को देखें और मन रूपी हाथ से भगवान का स्पर्श करें और मन से थी समझो कि अपने भगवान की सुगंध लेवे नासिका से और मन से थी अपने समझो कि भगवान की वाणी को कानों से सुने बंसी को कानों से सुने और भगवान के साथ में मन से वार्तालाप करें। इस प्रकार से थी हमारी जो सारी मन से जो चेष्टा हो वो एक मन से भगवान के मां रमे है उस रमण का फल है कि भगवान का साक्षात्कार दर्शन पाकर करके हर एक प्रकार से उसकी जो प्राप्ति कही जाती है जैसे बतलाया था कि मत्स्यता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथियम तस्व मांग नित्यं तुषंती चरमंती च ये आप तो बताया था आज पहले एक प्रकार से प्रातः काल जिनका मेरे में चित है वो मत्स्यता और जिनके प्राण मदगत है मेरे लिए जिनका जीवन है वो मदगत प्राण और बोधियंत परस्पर मेरा जो तत्व रहस्य है एक दूसरे को समझाते रहते हैं दूसरे को अनुभव कराते रहते हैं गोपियों की मां परस्पर में एक दूसरे को वो अनुभव कराया करती थी। तो बोधियंत परस्पर भगवान के कर्तव्य रहस्य को वो बतलाया करती थी। वो बोधियंत परतरं और कथियंत मांग नित्यम, और नित्य जो है सदा जो है मेरे गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों को मेरे भक्तों के बीच के वहां जो कथन करते रहते हैं। कथियंत मांग नित्यम और तुष्णी चरमती से इस प्रकार से करते हुए मेरे के वहां मेरे में अपने संतोष लाभ करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं और मेरे में रमन करते हैं। ये जो मैंने बताया ये रमन इस प्रकार का जो नित्य निरंतर जो साधन करते हुए और प्रेम से जो मुझको हंसते हैं, प्रेम से एक प्रकार से मुझको हंसते हैं, उन पुरुषों को मैं वे बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूँ कि जिसके द्वारा वे मुझको साक्षात प्राप्त कर लेते हैं। साधन काल के मां तो ये सब बातें प्रेम से मन से होती है, बुद्धि से होती है, और उसके फल के बीच के मां भगवान कहते हैं कि फिर मैं उसको ऐसा ज्ञान दे देता हूँ कि जिस ज्ञान के प्रभाव से थी मुझ परमात्मा को वे प्राप्त हो जाते हैं। तो प्राप्त होना उसका फल है और वो साधन है। तो साधन के समय के बीच में सब बातें जो बतलाई आपको वो मन से बतलाई, यदि प्रत्यक्ष हो जाए तो वो साधन नहीं, वो तो फिर उसका फल हो गया, तो उसे साधन का फल है भगवान की प्राप्ति। तो इस प्रकार से थी आपने साधन करना, ये गोपियों की लीला की थोड़ी बात कही और माधुर्य प्रेम की थोड़ी बात कही। और समझो कि ये बात तो इतनी है कि जितनी कही जावे उतनी थोड़ी है, जितनी कही जावे उतनी थोड़ी है। दूसरी बात थोड़ी ये बतलाई जाती है कि जिस समय के बीच के वहां इस प्रकार के साधन से थी भगवान साक्षात मिलते हैं, उनकी जो प्राप्ति होती है उस समय में वो अपने आप को संभाल नहीं सकता, अपने आप को संभाल नहीं सकता, उसको अपने आप का ज्ञान नहीं रहता, केवल भगवान का ही ज्ञान रहता है। जो थोड़ी देर के बाद में होश में आता है, होश में आता है तो भगवान को एक तक देखता देखता एकदम मुग्ध हो जाता है, चित्रान की माफक माने लिखे हुए चित्र की माफक वो एक आपने हो जाता है। उसके बाद के बीच के वहां जब और कुछ होश आता है तो उस समय के बीच के वहां भगवान के साथ के वहां जो उनका जो व्यवहार है, परस्पर का जो व्यवहार है, वहाँ परस्पर के व्यवहार के बीच के वहाँ इतना प्रेम हो जाता है कि मानो देखने के दो हैं और वस्तु से एक ही हो गए, देखने के दो और वस्तु से एक ही हो गए। तो उस समय के माँ प्रेमास्पद और प्रेमी और प्रेम इन मूर्तिमान एक प्रकार से अलग अलग स्वरूप से होते हुए धातु से मानो एक ही है। जैसे सोने के बहुत से गहने होते हैं तो सोने के नाते तो एक ही चीज है और आभूषण के नाते नाम रूप अलग अलग है। तो इस वास्ते भगवान की दृष्टि से थी भगत प्रेमास्पद और भगवान प्रेमी और प्रेम उसका नाता, और भगत की दृष्टि से भगवान प्रेमास्पद प्रेमास्पद और खुद प्रेमी और प्रेम का उनका नाता। तो इस प्रकार से समझो कि मानो प्रेम ही प्रेमास्पद और प्रेमी के रूप में प्रगट होकर के मानो लीला कर रहे हैं। उस समय में भगवान की सारी चेष्टा भगत के लिए और भगत की सारी चेष्टा भगवान के लिए, दोनों की परस्पर में एक दूसरे को आह्लादित करने के लिए होती है और परस्पर के मां उतरे उतरे प्रेम जो है सो बढ़ता चला जाता है। वहां समझो कि एक दूसरे के साथ के वहां जो व्यवहार है वहां कोई लज्जा नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई आपसी का समझो मान नहीं, मान जो है भय जो है और लज्जा जो है और आदर सत्कार है ये सब वहां समाप्त हो जाते हैं। इन सब से वो भगत उड़ जाता है, इसलिए ये चीज वहां उसकी गंध भी वहां नहीं रहती। जो एक प्रकार से थी अपनी पत्नी है और उस पत्नी के साथ में पति का जो अपने प्रेम का जो व्यवहार होता है वहाँ भी आदर है, वो अपने पति प्रतास्त्री भी अपने पति का आदर करती है। और भक्त जो है एक प्रकार से वो तो जब तक समझ कि यथार्थ रूप से भगवान को नहीं समझता तो कायदा तो रखता ही है और साथ साथ के बीच के वहां साथ साथ के वहां समझो कि अपने संकोच भी करता है, मन में कहीं थोड़ा भय भी हो जाता है। इस प्रकार से जो भगवान का सखा है वे भी एक प्रकार से मन के बीच के वहां इतना लज्जा को छोड़ करके नहीं व्यवहार कर सकता, किंतु जब इस परम प्रेम में जिसको हम माधुर्य प्रेम कहते हैं, जिसको एक प्रकार से समझो कि केवल विशुद्ध प्रेम कहते हैं, वहाँ न लज्जा है न मान है न भय है, इसको केवल हम विशुद्ध प्रेम का व्यवहार कह सकते हैं। तो उस समय के बीच के माँ दोनों एक मुग्ध हो जाते हैं और समझो कि रोमांस तो पहले ही हो जाते हैं, आशुपात तो पहले ही हो जाते हैं, ये तो समझो कि साधन काल की ही बात है। और यहाँ तो एक प्रकार से थी एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और देखते ही रहते हैं और एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। आंखों से देखना ये आंखों के द्वारा भजन है, आंखों से देखना ये आंखों के द्वारा भजन है और एक दूसरे को छूना ये हाथों के द्वारा जो है सो रमन है और वो आंखों के द्वारा रमन है। और आप श्री में जो बात करनी एक दूसरे को जो बात कह रहे हैं ये कानों के द्वारा रहे हैं।